ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा। शीर्ष न्यायालय अब इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाई यूजर को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नए वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार किया। पीठ ने तीन प्रमुख बिंदु उठाए। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड हों। भारत ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डिजिटलीकरण, स्थिरता और गतिशीलता के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच जारी सहयोग की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने क्वांटम, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों सहित साझेदारी और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनलैंड यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड मामले में निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर ऋषिकेश में श्री वैष्णव ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है।
कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्ष में देश का मछली उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 184 लाख टन हो गया है। श्री कुरियन ने आज पुदुचेरी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पुदुचेरी में 2300 मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। ये ट्रांसपोंडर मछुआरों को अपने परिवार से संवाद करने, आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं को पार करते समय अलर्ट प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। हांगकांग से अमेरिका भेजी जाने वाली वस्तुओं पर अमेरिका के शुल्क में छूट समाप्त करने के निर्णय के बाद हांगकांग पोस्ट ने सामान भेजने पर आज से रोक लगा दी। हांगकांग पोस्ट डाक सेवा ने कहा कि अमेरिका 2 मई से डाक के माध्यम से आने वाली वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने जा रहा है। हांगकांग पोस्ट ने कहा कि अमेरिका के लिए हवाई डाक सेवा 27 अप्रैल से निलंबित कर दी जाएगी। इस बीच डाक सेवा ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजों वाले अन्य डाक सामानों को भेजने पर रोक नहीं होगी। आईपीएल T20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कल मुंबई में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।